नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी दूसरा थिस्सलुनीकियों नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस अध्ययन को हम आरंभ करें, लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मैंने अपना मन ईश को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईश को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईश को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन काली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए श्रोता मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका लेखक पौलुस है। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सच्चे वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। पिताजी, आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, बीमार हैं, परेशान है या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में है, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें। आज के वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कलीसिया के उठाए जाने के बाद प्रभु का दिन। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। कलीसिया के उठाए जाने पर मसीह का दिन या अनुग्रह का युग समाप्त होता है और प्रभु का दिन आरंभ होगा। प्रभु का दिन पुराने नियम में बार बार आने वाला विषय है। परंतु कलीसिया के उठाए जाने का वहां कोई भी उल्लेख नहीं है। प्रभु का दिन रात से आरंभ होगा और वह दंड का समय होगा। भविष्यद्वक्ता यूएल नबी कहता है कि वह अंधकार का समय होगा, प्रकाश का नहीं। उस दिन का आरंभ इब्रानी दिन की नाई संध्या काल से होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया, या वचन या पत्री के द्वारा। इससे स्पष्ट है कि वहां या तो किसी का पत्र आया था या अफवाह थी कि प्रभु का दिन आ गया है। यह बड़ी रोचक बात है कि हर युग में ढोंगी पवित्र जनों का एक समूह अवश्य ही रहता है जो सोचते हैं कि स्वप्न, दर्शन और अन्य प्रकाशनों द्वारा उन्हें परमेश्वर से सीधी जानकारी प्राप्त होती है। मेरे मित्रों, मैं मानता हूं कि स्कूल जाने या बाइबल खोलकर अध्ययन करने की अपेक्षा फोन पर जानकारी प्राप्त करना अधिक आसान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह सीधी परमेश्वर से आ रही है। इसी प्रकार थिस्सलुनीके की कलीसिया में कहीं से यह विशेष प्रकाशन आया था जो भाई पौलुस की ओर से नहीं था। तब हम देखते हैं पत्री के द्वारा। इससे प्रकट होता है कि कोई अवैध पत्र वहां पर आया था, या संभवतः किसी ने कहा था कि उन्होंने एक पत्र में ऐसा पढ़ा है, मानो हमारी ओर से हो, अर्थात उन्हें भ्रम में डाला गया था कि वह पत्र पौलुस, तिमोथियस और सिलास की ओर से था। मेरे प्रियो, उस पत्र के अनुसार अफवाह उड़ाई जा रही थी कि प्रभु का दिन आ गया है। उस अफवाह के कारण थिस्सलुनीके के विश्वासी उलझन में पड़ गए थे। कारण हम समझ सकते हैं, वे कष्ट एवं सताव तो सहन कर ही रहे थे। अतः यदि कोई कहता कि वे महाक्लेश में हैं, तो वे उसकी बात आसानी से मान लेते कि प्रभु का दिन आ गया है। प्रभु का दिन एक प्रकार का शीर्षक है जिसका अभिप्राय है कि महाक्लेश से आरंभ होकर प्रभु राज तक का युग इस समय दंड के उंडेले जाने से आरंभ होता है। यूएल प्रभु के दिन को अपनी भविष्यवाणी के अध्याय 2 में कुछ अधिक विस्तार से व्यक्त करता है। पत्रस ने इसका संदर्भ पेंतिकोस्त के दिन दिया था। उसके श्रोता जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा, परंतु यह वह प्रभु का दिन था जो आने वाला था और वे उसके बारे में जानते थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 20 पद में पत्रस कहता है, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। निश्चय ही यह पेंतिकोस्त के दिन नहीं हुआ था। प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय भूकंप हुआ और अंधियारा छा गया था, परंतु पेंतिकोस्त के दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन बड़ी आंधी का सा शब्द हुआ और आग की जीभ प्रकट होकर हर एक उपस्थित जन पर बैठ गई। वहां आंधी तो नहीं उठी थी, परंतु आंधी की आवाज सुनाई दे रही थी। इस कारण सब निकलकर मंदिर परिसर में आए कि देखें क्या हो रहा है। पत्रस ने कहा कि पेंतिकोस्त का दिन वैसा ही था जैसा यूएल ने व्यक्त किया था। तुम सोच रहे हो कि ये लोग मदिरा के नशे में हैं? नहीं, वे आत्मा से भरे हुए हैं। यूएल की भविष्यवाणी के कारण रूढ़िवादी यहूदी जानते थे कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब परमेश्वर सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलेगा, परंतु पेंतिकोस्त के दिन सब पर आत्मा नहीं उंडेला गया था। प्रभु का दिन आज भी एक भावी घटना है। मेरे मित्रों, पत्रस अपने पत्र में भी प्रभु के दिन का उल्लेख करता है कि प्रभु का दिन ऐसे आएगा जैसे रात में चोर। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय में हमने देखा है कि प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को लेने रात में चोर की नाई आएगा। अतः कलीसिया को जागते रहना है और उसकी प्रतीक्षा करना है। नींद में पड़े संसार के लिए वह रात के चोर की नाई प्रकट होगा। दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में पत्रस कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी गड़गड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पेंतिकोस्त के दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 17 पद में भी स्पष्ट करता है कि प्रभु के दिन का कलीसिया से संबंध नहीं है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। यह कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया को तो प्रभु की प्रतीक्षा करना है, क्योंकि हम उसकी पहचान में हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। यदि हमें धोखा खाने से बचना है तो पौलुस की बात माने, क्योंकि वह दिन ना आएगा। कौन सा दिन? प्रभु का दिन, कलीसिया के उठाए जाने का दिन नहीं। प्रभु का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक 2 घटनाएं ना घटेंगी। ध्यान से सुनिए, पहला है जब तक धर्म का त्याग ना हो, दूसरा है वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। प्रभु के दिन के आरंभ होने से पूर्व ये 2 घटनाएं घटेंगी। आज तक इनमें से एक भी घटना नहीं घटी है। यहां धर्म त्याग के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है परस्थान या निराकरण। पौलुस के कहने का अर्थ है कि प्रभु के दिन के आगमन से पूर्व निराकरण होगा। निराकरण 2 प्रकार का होगा। पहला, पारंपरिक कलीसिया विश्वास का त्याग करेगी। प्रभु के आगमन पर धर्म का पूरा पूरा त्याग किया जाएगा। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक मसीह की कलीसिया यहां से उठा ना ली जाए। लूकार्ची सुसमाचार 18 अध्याय उसके 8 पद में प्रभु यीशु ने एक प्रश्न पूछा था, जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तब क्या वह विश्वास पाएगा। विश्वास से उसका अर्थ है सत्य का निकाय जिसे उसने यहां रखा था। उसके प्रश्न का उत्तर है नहीं। जब वह आएगा तब वह यहां विश्वास नहीं पाएगा। यहां पूर्ण रूपेण धर्म का त्याग होगा जिसके 2 कारण होंगे। पहला, कलीसियाई तंत्र विश्वास से टल जाएगा, और दूसरा, सच्ची कलीसिया का पृथ्वी से प्रस्थान। सच्ची कलीसिया के चले जाने के बाद विश्वास नहीं रहेगा, चाहे नाम की कलीसिया यहां उपस्थित हो। अतः सच्ची कलीसिया के संसार से कूच करने तक न तो प्रभु का दिन आएगा और न ही महाक्लेश के समय का आरंभ होगा। मेरे प्रियो, पौलुस कलीसिया के उठाए जाने के विषय अधिक चर्चा नहीं करता है, क्योंकि उसने अपने पहले पत्र में इसकी चर्चा की है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का सा शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह कलीसिया का प्रस्थान या निराकरण है। मेरे प्रियो, अब जो कलीसियाई तंत्र यहां रह जाएगा वह विश्वास में नहीं होगा। उस कलीसिया को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय में बड़ी वेश्या कहा गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लौदीकिया की कलीसिया 7वीं और अंतिम कलीसिया है और उसकी दशा दयनीय है। मेरे विचार में हम इस समय में ही हैं। सच्चे विश्वासी जा चुके हैं और कलीसिया की स्थिति और भी अधिक सोचनीय और दयनीय होगी और अंततः वह पूर्ण धर्म त्याग में पाई जाएगी। पार्थिव दृष्टिकोण से विश्वासियों का उठा लिया जाना प्रस्थान है और स्वर्गिक दृष्टिकोण से विश्वासियों का उठाया जाना झपटना है। मेरे विचार में उस समय संसार कहेगा, ओह वे तो चले गए। उनके विचार में प्रचारक और बाइबल शिक्षक कांटा है और उनके चले जाने पर ये लोग अति प्रसन्न होंगे। संसार आनंद मनाएगा। उन्हें यह बोध नहीं है कि वह दिन उनके लिए दुख का दिन होगा। वे सोचते हैं कि वे प्रभु राज की आशीषों में प्रवेश करेंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि वे महाक्लेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। वह समय ऐसे कष्टों का समय होगा जिसे किसी ने पहले कभी भी नहीं देखा। एक बार हम रेल यात्रा पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। वहां एक जल सेना का सैनिक अपनी सुंदर पत्नी और एक बच्चे के साथ था। वह एक दूसरे स्थान पर जा रहा था। उस दंपति के चेहरे पर उदासी थी। जब प्रस्थान का समय हुआ तब वह अपनी पत्नी और बच्चे को गले लगाने के बाद द्वार के पार हो गया। यह प्रस्थान था। उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को लिया और लौट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा हृदय गदगद हो उठा। उस स्त्री का जीवन कठिन होगा। मैं सोचने लगा कि संसार के साथ भी ऐसा ही होगा। कलीसिया के उठाए जाने पर बहुत लोग आनंदित होंगे, परंतु उन्हें अभी यह पता नहीं कि उनके लिए समय कैसा कठिन होगा। वे महाक्लेश के समय में होंगे। दूसरी घटना होगी, पाप का पुरुष विनाश का पुत्र प्रकट होगा। उसके प्रकट होते ही महाक्लेश आरंभ हो जाएगा। मेरे मित्रों, इस पाप के पुरुष को यहुना ख्रिस्त विरोधी कहता है। प्रसंगवश केवल यहुना ही इस शब्द का उपयोग करता है। ख्रिस्त विरोधी को धर्मशास्त्र 30 अलग अलग नाम देता है। वह पुराने नियम का विषय भी है। वह शैतान का प्रतिनिधि होगा। वह रोमी साम्राज्य को फिर से संगठित करेगा और विश्व शासक बन जाएगा। वह संसार को धोखा देगा। अति संभव है कि वह हमारे मध्य हो, परंतु महाक्लेश का समय आने तक वह अपने आप को सामर्थ्य में प्रकट नहीं कर पाएगा या अपनी वास्तविकता प्रकट नहीं कर पाएगा। पौलुस उसके विषय और अधिक जानकारी हमें देता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। वह दावा करेगा कि वही परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में हम देखते हैं कि समुद्र से निकलने वाला पशु ख्रिस्त विरोधी पश्चिमी यूरोप को संगठित करके एक राज्य बनाएगा। ऐसा करके वह स्वयं को परमेश्वर कहेगा। संसार भी उसे मसीहा स्वीकार करेगा, जो एक बड़ा धोखा होगा। हम आगे पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5 पद में, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। पौलुस इन बातों की चर्चा करने में संकोच नहीं करता है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रचारक के इन बातों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, परंतु पौलुस ने तो किया। उसने कहा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें किया करता था। आज की अव्यवस्था का भेद पवित्र आत्मा द्वारा रुकावट है। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद में, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। संसार में दुष्टता पर रोक कौन लगा सकता है? एकमात्र शक्ति जिसे मैं जानता हूं वह है पवित्र आत्मा। सरकार में ऐसी शक्ति नहीं है। रोमी राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो स्वयं दुष्टता का प्रतीक था। दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्र 2:7 में लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। मैं आपको इस पद की अधिक स्पष्ट व्याख्या सुनाता हूँ। अधर्म का भेद तो अपना काम करेगा, परंतु उसे रोकने वाला अभी यहाँ है और जब तक वह कुछ न करे उसे रोके रहेगा। ध्यान दीजिए, अधर्म का भेद तो पौलुस के युग में ही काम करने लगा था और आज तक काम कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया जो संसार की दशा प्रकट करता है। ये स्वर्ग राज्य के भेद हैं और संसार की और आज की कलीसिया की दशा प्रकट करते हैं। संसार में परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है, परंतु शत्रु ने आकर जंगली बीज डाल दिए। अब जंगली बीज और गेहूं एक साथ उगने लगे। आज परमेश्वर के वचन के साथ अधर्म भी पनप रहा है। संसार अधिकाधिक बुरा होता जा रहा है और एक प्रकार से उन्नत भी होता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतिहास में सबसे अधिक आज फैलाया जा रहा है। द्वार खुले हुए हैं, गेहूं पनप रहा है, परंतु जंगली पौधा भी पनप रही है। अधर्म बढ़ता जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा शैतान को इस युग में विजयी नहीं होने देगा। पवित्र आत्मा का प्रस्थान ऐसा होगा जैसा बोतल का ढक्कन खोलना, और अधर्म संपूर्ण संसार पर गिरेगा। पवित्र आत्मा का प्रस्थान कब होगा? वह कलीसिया के साथ ही प्रस्थान करेगा। क्या महाक्लेश के समय पवित्र आत्मा संसार में नहीं होगा? क्या वह पेंतिकोस्त के पूर्व संसार में नहीं था? निश्चय ही वह था। वह तो पुराने नियम के युग में भी था, परंतु उस समय उसकी सेवा भिन्न थी। कलीसिया के उठाने के बाद अर्थात उठाए जाने के बाद वह किसी और सेवा में होगा। इस समय पवित्र आत्मा हमें मुक्ति के दिन तक संभाले हुए है। उस दिन वह हमें यीशु को सौंप देगा। यदि वह ऐसा नहीं करे तो हम अपने आप तो कभी सफल नहीं होंगे। ऐसा करके वह पृथ्वी पर लौट आएगा और अपनी पहले की सेवा में लग जाएगा। मेरे प्रियो, उस समय वह दुष्टता पर रोक नहीं लगाएगा। वह कुछ समय शैतान को मनमानी करने देगा। मेरा विश्वास करें, उस समय मैं यहां नहीं रहना चाहता। समय तो आज भी बुरा है, और जब पूरी तरह शैतान के हाथ में कर दिया जाए तो मैं तो यहां पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। वह अधर्मी, ख्रिस्त विरोधी, पाप का पुरुष, वह विश्व शासक होगा। उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। जी हाँ, विश्व की कोई भी शक्ति उसे रोकने में सफल नहीं होगी। प्रभु यीशु का आगमन ही उसे रोक पाएगा। जिस प्रकार मिस्र देश में परमेश्वर के लोग असहाय और निराश थे जब तक कि परमेश्वर ने उन्हें मुक्ति नहीं दिलाई, उसी प्रकार महाक्लेश में विश्वासी जन भी ख्रिस्त विरोधी के राज में असहाय होंगे जब तक कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित न करेगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। फूंक का अर्थ है परमेश्वर का वचन, जो दोधारी तलवार है और वह उसके मुंह से निकलती है, जिसके द्वारा ख्रिस्त विरोधी का नाश होगा। परमेश्वर के वचन से ही जगत की सृष्टि हुई थी। परमेश्वर को केवल उच्चारण करना था। परमेश्वर ने कहा, उज्याला हो जाए, और प्रकाश प्रकट हो गया। प्रभु यीशु परमेश्वर का जीवित वचन है। आज हमारे पास बाइबल है, वह परमेश्वर का लिखित वचन है। यह लिखित वचन जीवित वचन के बारे में है और सामर्थी है। प्रभु यीशु जब आएगा तब वह परमेश्वर का जीवित वचन होगा। लिखा है, अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। यहां तेज का मूल अर्थ है चमक, उसके आगमन की चमक। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में यही शब्द आया है, प्रगट, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, यह उसके आगमन का प्रकाशन था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उसका पुनः आगमन एक और प्रकाशन होगा। वह अपनी कलीसिया को उठा लेगा और फिर आकर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। उसके प्रथम आगमन के भी 2 चरण थे, शिशु रूप में जन्म और सेवकाई में प्रवेश, 30 वर्ष की आयु में मंदिर का शोधन। उसके द्वितीय आगमन के भी 2 चरण होंगे, कलीसिया को हवा में उठाना और फिर पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए आना, जब ख्रिस्त विरोधी उसके आगमन के तेज से भस्म हो जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, यह क्या ही भली बात है कि हम अपने उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो मुझे और आपको उस महाक्लेश से बचा सकता है। क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी न छीन ले सके। दे दिया आज से मैं उसके लिए जीऊंगा, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा, मैंने अपना मन। निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी।